राजवंश विला में हर कोई इशिका के जुड़वां बच्चों की खबर सुनकर खुश था। पार्थ भी वहीं मौजूद था, लेकिन उसे ये खबर सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर भी मजबूरी में उसे इशिका और अभिमन्यु को बधाई देनी पड़ी। सभी अपनी अपनी तरफ से इशिका को अपना ख्याल रखने की सलाह दे रहे थे। इसी बीच राधिका को केशव का मैसेज आया, जिसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। राधिका ने समय देखा तो शाम के लगभग 6 बज रहे थे। केशव उसे मिलने के लिए अपने घर पर बुला रहा था। आदर्श के जाने के बाद वो घर केशव सिंघानिया ने खरीद लिया था, इस बारे में सब जानते थे। ऐसे में राधिका अकेले जाकर किसी को भी बात करने का मौका नहीं देना चाहती थी, पर साथ ही वो ना जाकर केशव को भी नाराज नहीं कर सकती थी। राधिका इशिका के पास आई और उसका हाथ पकड़कर धीरे से प्यार से कहा, क्या तुम ये खुशखबरी अपने डैड के साथ शेयर नहीं करना चाहोगी? केशव को पता चला तो उसे बहुत खुशी होगी। राधिका का चेहरा देखकर इशिका को समझ आ रहा था कि जरूर बात कुछ और है। उसने बिना किसी सवाल के हाँ में सिर हिला दिया। इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखा और पूछा, क्या मैं माँ के साथ सिंघानिया मेंशन जा सकती हूँ? वैसे तो मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिस तरह से तुम मुझे इतनी देर से इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हो, लगता नहीं कि तुम जाने दोगे। बिल्कुल सही समझा तुमने, मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलने से नहीं रोकूंगा। इतनी बड़ी खुशखबरी जानना उनका भी हक है। क्यों ना हम शाम को डिनर के लिए उन्हें यहाँ पर इन्वाइट कर लें? अभिमन्यु ने बीच का रास्ता निकालते हुए सुझाव दिया। इशिका ने कुछ भी कहने से पहले राधिका की तरफ देखा। उसने जवाब में ना में सिर हिला दिया था। राजवंश परिवार में काफ़ी सारे हाउस हेल्पर काम करते थे, जिस वजह से उनकी निजी बातें भी बहुत बार बाहर लीक हो जाती थीं। हालांकि अभिमन्यु उसका पूरा ख्याल रखता था, पर कोई ना कोई उनमें से ऐसी हरकत करता ही रहता था। इशिका ने अभिमन्यु से कहा, मेरा वहां जाकर ही उनसे मिलने का मन है। तुम पूरे दिन से मेरे साथ थे, अब मैं माँ के साथ चली जाऊँगी। तब तक तुम अपने काम निपटा सकते हो। ठीक है, अभिमन्यु ने भी ज़्यादा ज़िद नहीं की। वैसे भी इशिका और राधिका साथ में कम ही समय बिता पाती थीं। फिर ड्राइवर तुम लोगों को वहां पर छोड़ आएगा, तुम्हें ड्राइविंग करने की ज़रूरत नहीं है। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी। कुछ ही देर में वो राधिका के साथ गाड़ी के अंदर थी। राधिका के चेहरे की बेचैनी उसे साफ नज़र आ रही थी। इशिका ने राधिका का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, अब बताइए क्या हुआ है माँ? चाहे जो भी हो, पर एक बात साफ है कि आप डैड से नहीं मिलना चाहती हैं। मैं सबके सामने पूछना नहीं चाहती थी, लेकिन अब हम अकेले हैं तो आप बता सकती हैं। आखिर बात क्या है? वो तो मैं भी नहीं जानती। केशव ने अचानक मुझे मैसेज करके मिलने के लिए बुलाया है। डर लग रहा है कि अब वो कोई नया तमाशा ना कर दे, राधिका ने परेशान आवाज में कहा। उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं हूँ संभालने के लिए, इशिका ने हल्का मुस्कुराकर कहा। तुम हो तभी मुझे हर चीज़ की तसल्ली रहती है। अभी भी मेरे बिना कहे सब कुछ समझ लिया था। मुझे तुम पर नाज है इशिका, और साथ ही अफसोस होता है कि अगर शुरुआत से मैंने तुम्हारी परवरिश की होती तो मैं ये कह सकती थी कि मैंने तुम्हें अपने हाथों से पाला है, तभी तुम इतनी समझदार और टैलेंटेड हो, राधिका ने जवाब दिया। मुझे आपने ही पाला है माँ, भले ही डायरेक्टली नहीं, लेकिन आपको देखकर मैं आप जैसा बनने की कोशिश करती थी, और देखिए मैं आप जैसी बन गई, इशिका बोली और उसने राधिका के कंधे पर सिर रख लिया। तुम मुझसे भी बेस्ट हो बेटा, राधिका ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। राधिका हमेशा से ही इशिका से बहुत प्यार करती थी, पर आयशा के चलते कभी खुलकर नहीं कह पाती थी। जब से उसे पता चला था कि इशिका उसकी ही बेटी है, तब से उसका प्यार और भी बढ़ गया था। कुछ ही देर में वे लोग केशव के घर पर पहुंच चुके थे। केशव ने सिर्फ राधिका के ही आने की उम्मीद की थी। अचानक इशिका को अपने सामने देखकर वो थोड़ा हैरान जरूर हुआ था, लेकिन साथ ही उसे खुशी भी हुई थी। इशिका की गाड़ी से निकलते ही केशव ने अपनी बाहें फैला दी तो इशिका जल्दी से जाकर उनके गले लग गई। इशिका ने सिर उठाकर केशव की तरफ देखा और कहा, मैंने आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर दिया होगा, डोंट वरी, सिर्फ माँ को यहाँ पर लेकर आई हूँ, आप आराम से बैठकर बात कर सकते हैं, मैं बीच में नहीं आऊँगी। उसके चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान थी। अगर इशिका का बस चलता तो वो केशव और राधिका के बीच में सब कुछ ठीक कर देती। इशिका की बात सुनकर राधिका हल्का सा झेंक गई, वहीं केशव ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा तो मेरी बेटी बड़ी बनने की कोशिश कर रही है, लगता है फिर से तुम्हारे पति को डांट लगानी पड़ेगी जो तुम्हारा ध्यान नहीं रख रहा है। प्रेगनेंसी में इतना बाहर घूमना सही नहीं रहता है, अभिमन्यु को ढूंढने के चक्कर में तुम पहले ही बहुत परेशान हो चुकी हो। अरे हाँ, प्रेगनेंसी से मुझे कुछ याद आया, इशिका जल्दी से बोली। फिर उसने हल्का मुस्कुराकर कहा, आपको पता है आप दो दो बच्चों के एक साथ नानू बनने वाले हो, सिर्फ हमारी ही नहीं आप सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। क्या सच में? केशव ने हैरानी से आंखें बड़ी करके पूछा। उसने राधिका की तरफ देखा तो उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। केशव ने गहरी सांस ली और इशिका के माथे पर हल्का सा किस करके कहा, लगता है सारी खुशियां एक साथ ही मिलने वाली हैं। बिल्कुल, चलो अब मैं अंदर जा रही हूँ, आप लोग आराम से बात कीजिए, इशिका ने उनसे अलग होकर जवाब दिया और राधिका को आंखों ही आंखों में सब संभालने का इशारा किया। इशिका ऊपर चली गई थी। उसके जाते ही केशव एक्साइटेड होकर राधिका से कहा, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन कहते हैं कुछ क्वालिटीज जीन्स में मिलती हैं। हमारे भी तो ट्विंस हुए थे, तो इशिका भी, बोलते हुए अचानक केशव रुक गया। अनजाने में ही सही, लेकिन केशव की बातों से राधिका और केशव दोनों के ही पुराने जख्म हरे हो गए थे। राधिका के चेहरे पर अचानक दर्द के भाव उभर आए थे। उसने अपनी दूसरी बेटी को कभी देखा तक नहीं था, जबकि केशव को तो इस बारे में पता भी नहीं था। राधिका को लगा कि इस बात के लिए फिर से केशव उसे ताने मारेगा, तो उसने धीरे से भरी आवाज में कहा, तुम्हें मुझे जितना सुनाना है सुना सकते हो, गलती मेरी ही है। हाँ, मैंने एक गलत इंसान पर भरोसा किया और अपनी दोनों ही बेटियों को दुख में डाल दिया। एक मुसीबत से बचने के लिए उन दोनों को उम्र भर की तकलीफ दे दी मैंने। राधिका की आंखों में पानी छलक पड़ा था। राधिका ने मन ही मन केशव के ताने सुनने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। तभी केशव उसके थोड़ा पास आया और उसके आंसुओं को साफ करते हुए धीरे से सुकून भरी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। राधिका ने हैरानी से केशव की तरफ देखा। केशव उसकी नजरों को समझते हुए बोला, मैं हमेशा तुम्हें ही ब्लेम करता था, जबकि अकेले मेरी बेटियों ने नहीं, तुमने भी बहुत कुछ सहा है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आदर्श ने मुझे हमेशा अच्छे से रखा था, उसने कभी मेरी मर्जी के खिलाफ टच तक, अचानक बोलते हुए राधिका रुक गई थी। पहले भले ही आदर्श ने कभी उसके साथ जबरदस्ती ना की हो, लेकिन आखिरी वक्त में उसने जो किया वो राधिका भूल कैसे सकती थी? उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली थी। केशव ने राधिका को अपने सीने से लगाया। इस वक्त राधिका भूल गई थी कि केशव और उसके बीच कोई रिश्ता नहीं है, बस वो उसके सीने से लगी हुई रो रही थी।
मैंने सब पता कर लिया है, मेरे सामने उस आदमी की तारीफ करने की कोशिश मत करो। तुम्हारी आंखों के सामने उसने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे बदला लेने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसने। मेरी बेटी को बदला, खुद की बेटी को हक और माँ बाप का प्यार देने के लिए तुम्हारी बेटी बना दिया। उस औरत को हमेशा तुम्हारे सिर पर रखा ताकि अपनी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी को तकलीफ मिलते हुए देख सके। तुम जानती भी हो तुम्हारी इस बीमारी का कारण क्या है? वो मालविका, इतने सालों से ना जाने तुम्हें खाने में क्या मिलाकर दे रही थी जिसकी वजह से तुम इतना सफर कर रही थी। केशव ने एक साथ में राधिका को सब कुछ बता दिया था। कुछ ही दिनों पहले केशव ने मालविका के बारे में सब कुछ पता किया था, जिसमें एक बात ये भी थी कि राधिका की बीमारी के पीछे का कारण मालविका ही थी। साथ ही उसे ये भी पता चला था कि अपनी बीमारी से चलते राधिका बहुत तकलीफ में थी। बहुत बार तो उसने डॉक्टर से कुछ ऐसी दवाइयां तक देने के लिए कहा था जिसकी वजह से वो मर सके। वो राधिका को अच्छे से जानता था, वो एक स्ट्रांग लड़की थी, उसने कभी भी मरने तक का नहीं सोचा था। राधिका केशव से अलग होकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो बोली, तो डॉक्टर ने अब तक इस बारे में पता क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आदर्श सिंघानिया ऐसा नहीं चाहता था। तुम अगर कमजोर रहती तो तुम्हें एक सहारे की जरूरत पड़ती, और वो सहारा बनकर आदर्श सामने आया था। केशव ने राधिका को सब बता दिया था। अब राधिका को आदर्श के कैर के पीछे भी उसका सेल्फिश बिहेवियर नजर आने लगा था। उसे आदर्श से और भी नफरत हो चली थी। केशव ने गहरी सांस लेकर कहा, और दुनिया से कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, मरने से पहले उसने तुम्हारे साथ जो किया वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता हूँ। अगर वो आदमी जिंदा होता तो मैं उसे इतना तड़पाता कि उसे अपने किए पर अफसोस होता, जैसा कि अब मालविका को हो रहा है। मालविका का जिक्र आते ही राधिका को उसका ख्याल आया। अभिमन्यु ने उन्हें यही बताया था कि मालविका केशव के पास है। राधिका मालविका के बारे में पूछती उससे पहले ही केशव ने अपना मोबाइल निकालकर उसे मालविका की लाइव फुटेज दिखाई, जहां वो एक रोड पर व्हीलचेयर पर बैठकर भीख मांग रही थी और लोग उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे। मालविका की ऐसी हालत देखकर राधिका को जरा भी अफसोस नहीं हुआ, उल्टा उसके चेहरे पर नफरत के भाव थे। आयशा और मालविका जैसे लोग अपना ऐसा ही अंत डिजर्व करते हैं, राधिका ने गुस्से में कहा। लेकिन तुम तो ये सब डिजर्व नहीं करती थी ना राधिका, केशव ने राधिका की तरफ देखते हुए धीरे से कहा। राधिका का पूरा ध्यान वीडियो में था, इस वजह से उसने केशव की बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। केशव ने गहरी सांस ली और राधिका के हाथ से मोबाइल लेते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं, इशिका अकेली होगी। राधिका ने उसके बात पर हामी भरी और अंदर आ गई। वहीं दूसरी तरफ पार्थ इस वक्त अपनी माँ सुनैना के साथ था। उसने सुनैना को इशिका के ट्विंस होने की बात बता दी थी। पार्थ ने गहरी सांस ली और सुनैना से कहा, मॉम वो प्रेग्नेंट है, ऊपर से ट्विंस होने वाले हैं, मुझे ये सही टाइम नहीं लग रहा है। हम जो भी प्लान कर रहे हैं उसके बाद इशिका का जेल जाना तय है, पता नहीं क्यों ये तरीका मुझे सही नहीं लग रहा। बच्चों की कोई गलती नहीं है, वो ये सब डिजर्व नहीं करते हैं। पार्थ के बदले हुए इरादे देखकर सुनैना थोड़ी हैरान रह गई। उसने खुद को सख्त करके कहा, जब मेरे साथ उन्होंने गलत किया तब नकुल पैदा होने वाला था। मुझे इतना परेशान किया गया कि मैं उन्हें बता तक नहीं पाई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसमें नकुल की गलती थी? तुम्हारे बाप ने मेरे साथ जबरदस्ती करके मेरे साथ रिश्ता बनाया, तुम पैदा होने वाले थे, क्या तुम्हारी गलती थी इन सब में? मेरे बच्चों ने सफर किया तो राजवंश खानदान के बच्चे भी करेंगे। मॉम लेकिन, पार्थ ने सुनैना को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुनैना ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, कहीं तुम्हारा इरादा बदल तो नहीं गया है पार्थ? अगर ऐसा है तो पहले ही बता दो, पैसे भी मुझे अपने ही बच्चों से धोखा खाने की आदत सी हो गई है।
खून तो तुम उन लोगों का ही हो, पहले नकुल तो अब तुम। सुनैना पार्थ को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी, वो चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। अब फैसला उस पर था कि वो सुनैना की बात मानकर अपने प्लान पर टिका रहता है या फिर इशिका के लिए बदलते इमोशन सच में उसे उसका प्लान बदलने पर मजबूर कर देंगे। क्या होगा पार्थ का फैसला, यह आपको अगले चैप्टर में पता चल जाएगा, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। वैसे पार्थ का जो प्लान है वो सच में बहुत खतरनाक है, और वो सक्सेसफुल हो गया तो अभिमन्यु और इशिका लिटरली बर्बाद होकर रह जाएंगे।